नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6। आज से नया अध्याय शुरू हो रहा है। पिछले अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका क्या नाम था? देवताओं ने स्तुति किया। अब भगवान देवताओं के समक्ष प्रकट हुए हैं। इस कथा से हम लोगों को यह शिक्षा लेनी चाहिए। सर्वप्रथम शिक्षा यह है कि अगर हम भगवान से कातरमयी प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। प्रसंग को समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो हम लोग श्लोक उच्चारण कर ले, नहीं तो लेट हो जाएगा। प्रसंग इस प्रकार का है, जैसे हम लोग इस स्कंद के पिछले से पिछले अध्याय में गजेंद्र मोक्ष में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक हाथी ने अपने सूंड से आपत्ति के समय उसी तालाब से जिस तालाब में ग्राही ने उसको ग्रसित कर चुका था कमल का फूल लिया और भगवान के चरणों में न्योछावर किया। तो भगवान ने तत्क्षण आकर के उसकी रक्षा की है। वैसे ही उसके बाद वाले दूसरे अध्याय में आइए, इससे जो पिछले वाला अध्याय था कि दुर्वासा जी ने भगवान की प्रसादी वाला दिया इंद्र को और इंद्र ने अपने पद के उन्मत्तता में अपने ऐरावत हाथी को उन्होंने वो माला दे दिया। लेकिन हाथी एक तमोगुणी जीव है, वह क्या उस माता को जानता है कि यह किसकी प्रसादी है। उसने अपने पैरों से रौद डाला जिसके चलते देवताओं को यह श्राप मिल चुका कि तुम जिस मादकता के अंदर भगवान की प्रसादी माला का महत्व नहीं समझ रहे हो तो तुम अपने पद से और अपने वैभव से चीत हो जाओ। तो उस प्रसंग में पिछले वाले अध्याय में देखा जाता है कि जैसे ही दुर्वासा जी का श्राप लगा देवताओं का सब कुछ छिन गया। लेकिन देवताओं के अंदर एक बहुत बड़ा गुण यह है कि जब जब भी उनके ऊपर आपत्ति और विपत्ति आती है वह भगवान को स्मरण करते हैं। सदा से भागवत के अंदर दो प्रकार के लोगों की वर्णन हम लोग सुनते आ रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले और देव प्रवृत्ति वाले। तब हम लोग इस प्रसंग को शुरू करने से पहले यह समझें कि चाहे योनि किसी भी प्रकार की हो लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमें मिल जाते हैं। हनुमान जी बंदर योनि में हैं, गजेंद्र जी हाथी योनि में हैं, जटायु जी गिद्ध योनि में हैं, किसी भी योनि में है लेकिन भक्ति की प्रधानता है, भगवान की शरणागति की प्रधानता है। इसलिए भक्ति की महिमा है। अब आइए हम लोग इस प्रसंग पर चलें कि भगवान ने जब देवताओं की स्तुति को सुन लिए तो उनके समक्ष प्रकट होकर के उनको क्या आदेश दे रहे हैं कि क्या करोगे, तो तुम फिर अपने वापस पोजीशन पे आ जाओगे। अब उस प्रसंग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, समुद्र मंथन की कथा। श्लोक नंबर 1 से हम पढ़ेंगे अनुवाद को। पहले तो प्रभुपाद जी की लिखी भागवतम में यह सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी अध्याय को वर्णन करने से पहले उसके सारे सारांश को शुरू में ही लिख देते हैं। तो हम लोग पहले इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद जिस श्लोक में और तात्पर्य नहीं है उस तात्पर्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। श्री ब्रह्मा वाच अजात जन्म स्थित संजमान निर्वाण सुख अर्णवाय अड़ो अड़िमने अपरिगण्य धामने महाअनुभवाय नमः नमः ते। श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थिति संजयाम राज निर्माय सुखार्णवाय अड़ो रडिमने अपरिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाय सुखार्णवाय अड़ो रडिमने अपरिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्री ब्रह्मा वाच ब्रह्मा ने कहा अजात जन्म स्थिति संयमाय भगवान जो कभी उत्पन्न नहीं होता किंतु जिनका विविध अवतारों में प्रकट्य कभी बंद नहीं होता अगुणाय प्रकृति के तीनों गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं निर्वाण सुख अर्णवाय भौतिक सृष्टि से परे शाश्वत आनंद के सागर अड़ो अड़िमने अणु से भी छोटा अपरिगण्य धामने जिनके शारीरिक स्वरूप की अनुभूति भौतिक चिंतन से नहीं की जाती महाअनुभावाय, जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, नमः, नमस्कार है, नमः, फिर से नमस्कार है, ते आपको, ते मतलब तुम्हें यहाँ लिखा गया है, लेकिन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं इसलिए आपको हम कह सकते हैं। ओम यज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितवजेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो यम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल स्वरूपाय सर्वानंद विदायिने। लेट हो रहा है, 8:30 होने वाला है, इसलिए मन ही मन भगवान को और भक्तों को प्रणाम करते हुए हम लोग इस कथा में प्रवेश करें। अब भगवान प्रकट होते ही ऐसे स्वरूप में प्रकट हुए हैं देवताओं के समक्ष कि इन श्लोकों में आया है कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। आप सोचिए कि एक सूर्य के प्रकाश को हम सहन नहीं कर पाते, एक सूर्य के तरफ हम आंखें उठा करके देख नहीं सकते, तो आप अनुभव कीजिए, एक अंदाज लगाइए कि हजारों सूर्य अगर एक साथ उदित हो जाए तो किसको देख सकता है आदमी? अपने आप तक को भी नहीं देख सकता है। और वही बात हुआ देवताओं के साथ। जैसे ही भगवान देवताओं के समक्ष उदित हुए तो देवताओं के आंख, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चकाचौंध हो गया, यहां तक कि न भगवान को देख सके न अपने आप तक को देख पाए। अब प्रभुपाद जी के शब्द में इस अध्याय का जो नाम है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा, इसका सारांश लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि इस पूरे अध्याय के अंदर श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पता चल जाएगा कि इस अध्याय के अंदर क्या वर्णन है। क्योंकि अगर कथा प्रसंग को अगर हम लोग समझते हुए चलते हैं तो भागवत समझ में आती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस अध्याय में बताया गया है कि जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके समक्ष किस प्रकार प्रकट हुए। भगवान की सलाह के अनुसार देवताओं ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्ति के लिए असुरों के साथ संधि कर ली। भगवान की यह अनुमति थी देवताओं के लिए, अगर कोई काम बनाना है तो आप लोग एक ही पिता के संतान हो, आपस में मिल जाओ। देखिए भगवान की अगर देखा जाए इस प्रसंग में तो भले कोई कहे कि भगवान पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन यह झलक जाता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष जरूर लेते हैं। भगवान स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं दशम स्कंध के अंदर कि मैं भक्तों के बिना खुद अकेलापन का अनुभूति करता हूं, इसलिए इस धराधाम पर लीला करने से पहले, अपने आने से पहले अपने सारे परिकरों को पहले भेज देते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया देवताओं को कि अगर आप लोग अपने पुनः स्थिति में आना चाहते हैं तो दोनों पक्ष मिल करके आपस में संधि करके समुद्र मंथन कीजिए। पिछले अध्याय में वर्णित देवताओं की स्तुति से चिरोदक साई विष्णु प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। सारे देवता उनके दिव्य शारीरिक तेज से लगभग चकाचौंध हो गए। अतः प्रारंभ में वे तो उनके शरीर का कोई भी अंग नहीं देख पाए, किंतु कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा तो शिव समेत भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म मृत्यु से परे होने के कारण भगवान नित्य हैं। सुन लीजिए, जो निराकार निराकार रटते हैं उनको परास्त करने का सूत्र ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान क्या है। वास्तव में हम लोग भगवान को देख नहीं पाते इन हाड़ मांस के आंखों से, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान निराकार है। नहीं तो जिस ग्रंथ में केवल भगवान के रूपों का वर्णन है, उनके लीलाओं का वर्णन है, उनके भक्तों का वर्णन है, वैसे भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं। जो सबके आकार को बनाने वाले हैं वो निराकार कैसे हो सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि जन्म मृत्यु से परे होने के कारण भगवान नित्य है। कभी भगवान की भगवत्ता खत्म नहीं होती। भागवत का प्रथम स्कंद पढ़ करके देखिए, चाहे दसम स्कंद में भी एक श्लोक आया है कि सत्यम परम त्रिसत्यम भगवान के लिए कहा गया कि तीनों काल में परम सत्य एकमात्र भगवान है। उनकी भगवत्ता में कभी कमी नहीं आती। भगवान बच्चे स्वरूप में है तो, चाहे जुआ स्थिति में हो, तब भगवान के भगवत्ता में कोई कमी नहीं। दूसरी योग्यता भगवान की बताते हैं ब्रह्मा जी कि वे भौतिक गुणों से रहित हैं, तो वे भी असीम गुण असीम शुभ गुणों के सागर हैं। आप अंदाज लगाइए कि भगवान अनंत शेष जी अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान अनंत के गुणों का गुणगान करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। इसलिए भगवान का एक नाम असीम है, जिनका कोई सीमा नहीं, जिनको कोई माप नहीं सकता। तीसरा सूत्र बता रहे हैं कि वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, वे अदृश्य हैं और उनका रूप अचिंत्य है। अगर हम अपने आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाते हैं तो भगवान को हम सर्वत्र देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहे हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यव श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषंतम हम भजन। भगवान को हम देख सकते हैं तो केवल एक मात्र प्रेम रूपी आंखों से, प्रेम से देख सकते हैं। इसलिए देखने की तरीका, सुनने की तरीका, समझने की तरीका, व्यवहारिक तरीका, इस संसार में जीने की सारी तरीका भागवत सिखाती है। भागवत के अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमारे जीवन में व्यवहार में लाने लायक नहीं है। सब कुछ सीखने लायक है। वे सभी देवताओं के लिए पूज्य हैं। आप सोचिए कि हम लोग गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास बनते हैं, यहां जाते हैं इनको चढ़ाओ बूंदी, इनको चढ़ाओ उनको चढ़ाओ, कहां कहां भटकते हैं। और खास करके हमारे हिंदुओं के सैकड़ों भगवान हैं। हमारे हिंदू तो इतने डिवाइड हो चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि उनको आज तक पता नहीं है कि भगवान है कौन, किसकी पूजा करनी चाहिए। जब तक हम भागवत नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के श्रोतीय संप्रदाय है, कथा कृष्ण कथा श्रोत्रिय संप्रदाय है, सुनने से ही यह आगे बढ़ता है। एक ने सुना, दूसरे को बताया, दूसरे ने सुना, तीसरे को बताया, या ऐसे प्रसारित होता है। श्रवणे कथा परीक्षित, श्रवणे कथायाम परीक्षित, मतलब परीक्षित के द्वारा सुनने के कारण ही भागवत को हमें सुनने को मिल रहा है। देवता लोग जिसकी पूजा करते हैं, देवताओं की स्थिति बताई गई है, दीप्तमान इति देवता, जिसके शरीर से प्रकाश का पुंज निकलता है, जो हमेशा चमकते रहते हैं, उनको देवता कहते हैं। जिनका पैर इस पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, उनको देवता कहते हैं। वैसे व्यक्ति जब भगवान की पूजा करते हैं, तो हम लोग जैसे नगण्य पुरुषों की क्या स्थिति है? हम देवताओं से या अपने बड़े व्यक्ति से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा कृपा कीजिए कि जो भक्ति का आनंद आप ले रहे हैं, वही आनंद मैं भी ले पाऊं, कृपा की याचना कर सकते हैं। प्रभुपाद जी वास्तव में हर श्लोक के सारांश को, अर्थात भावार्थ को टच करते हुए लिख देते हैं, सारांश अध्याय का है। उनके स्वरूप में असंख्य ब्रह्मांड स्थित रहते हैं, अतः काल दिक या परिस्थिति के द्वारा इन ब्रह्मांडों से कभी विलग नहीं होते। आप इस समझ लीजिए कि भगवान काल के अंदर नहीं आते, और दिक मतलब दिशा, किसी दिशा के बंधन में नहीं है कि यहां से यहां तक ही भगवान रहते हैं। सर्वत्र भगवान है, सब जगह है, सब परिस्थिति में है, सबके साथ है। लेकिन आज तक उनके अंदर कोई कमी नहीं है। वे प्रधान है, यद्यपि वे भौतिक सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत हैं, लेकिन मायावादियों द्वारा कल्पित सर्वेश्वरवाद में कोई दम नहीं है। भगवान अपने अधीन बहिरंगा शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। वे अपनी अचिंत्य दिव्य स्थिति के कारण भौतिक शक्ति के सदैव स्वामी बने रहते हैं। भगवान अपने नाना रूपों में इस भौतिक जगत में भी सदैव विद्यमान रहते हैं, किंतु भौतिक गुण उन्हें छू भी नहीं पाते। पहली योग्यता यह है भगवान की कि भगवान इस भौतिक गुण में प्रवेश करते हुए भी नहीं प्रवेश करते हैं। जैसे जेलर साहब जेल के अंदर जाता है, कैदियों से मिल सकता है, सबकी मतलब निगरानी कर सकता है, लेकिन जेल के कैदियों की तरह वो बंद नहीं सकता। भगवत गीता में दिए गए उपदेशों के द्वारा ही उनकी स्थिति समझी जा सकती है। जैसा कि भगवत गीता में 10:10 में भगवान ने कहा है कि ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति योग। केवल भक्ति योग की विधि से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। भगवान को समझने का आसान तरीका है कि उनकी भक्ति की जाए। भक्ति के जितने भी अंग हैं, किसी अंग में से, नवधा भक्ति के किसी भी अंग में से किसी एक को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो भी हम इस भवसागर से आसानी से पार हो जाएंगे। मेरे महाराज श्री तो कहा करते हैं कि व्यक्ति केवल अपने जीवन में यह संकल्प ले ले कि मैं प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करूंगा, इतने से उपार है। प्रणाम करना ही अपने आप में इस भवसागर से पार करने का एक आसान तरीका है। और भगवान इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब श्रेष्ठ मान रहा है, बड़ा मान रहे हैं, तभी तो मुझको प्रणाम कर रहा है। अब उसकी फलश्रुति को वो अपने हिसाब से देते हैं। जब शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने सारे देवताओं को आदेश दिया। भगवान अजित ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के समक्ष शांति प्रस्ताव रखें, जिससे संधि हो जाने पर देवता तथा असुरगण क्षीर सागर का मंथन कर सकें। इसके लिए सबसे बड़े वासुकी सर्प को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मंथानी बनाया जाए। इस मंथन से विष भी उत्पन्न होगा, किंतु उसे शिव जी ग्रहण कर लेंगे, अतएव भय की कोई बात नहीं है। इस मंथन से अनेक आकर्षक वस्तुएं प्राप्त होगी, किंतु भगवान ने देवताओं को सावधान कर दिया कि वे ऐसी वस्तुओं से मोहित ना हो। जब समुद्र मंथन होगा तो ऐसी ऐसी वस्तु, मोहक वस्तु पैदा होगी, जिससे आप लोग सावधान होना, मोहित न होना। अर्थात रूपा जी यहां संकेत कर रहे हैं कि देवता लोग, मोहिनी रूप के प्रति आप लोग सावधान रहना, आप लोग मत आसक्त होना। इस मंथन से विष भी उत्पन्न होगा, किंतु उसे शिव जी ग्रहण कर लेंगे, अतएव भय की कोई बात नहीं। इस मंथन से अनेक आकर्षक वस्तुएं प्राप्त होंगी, किंतु भगवान ने देवताओं को सावधान कर दिया कि ऐसी वस्तुओं से मोहित न हो, और यदि कोई उपद्रव हो तो भी देवता क्रुद्ध न हो, शांति रखिएगा। देवताओं को ऐसी सलाह देकर भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। भगवान के आदेशानुसार देवताओं ने असुरों के राजा महाराज बलि से संधि कर ली। तब देवता तथा असुर दोनों ही मंदर पर्वत को अपने साथ लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। इस पर्वत की गुरुता के कारण देवता तथा असुर दोनों ही थक गए और कुछ तो वास्तव में मर गए। यहां संक्षिप्त में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मंदराचल पर्वत को देवता और असुर जब उठा करके लेके आ रहे थे तो उसके भार को, उसके गुरुता को सहन नहीं कर पाए, उस पहाड़ को मतलब रख दिए, जिसके कारण कितने असुर और देवता दोनों भी चकनाचूर हो गए, मर गए। लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति से फिर पुनर्जीवित किया उन लोगों, और स्वयं भगवान आए और उस मंदराचल पर्वत को एक हाथ से उठाए और गरुड़ जी के पीठ पर रखे, और साथ में गरुड़ जी के पीठ पर भगवान स्वयं बैठे और उनको ले जाकर के उस समुद्र के अंदर, क्षीर सागर के अंदर, उस मंदराचल पर्वत को रख दिया जहां मंथन होना था। आप अंदाज कर सकते हैं कि भगवान के बाहर गरुड़ जी में कितनी शक्ति है। सारे देवता और असुर मिलकर के जिस पर्वत को लाने में मर गए और फिर रास्ते में ही रख दिए, नहीं ले जा पाए। भगवान बात बात में, मतलब खेल खेल में कहिए, उस मंदराचल पर्वत को अपने हाथ से उठाए और गरुड़ जी के पीठ पर रख करके बैठे, साथ में गरुड़ जी उनको ला करके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिए। ये शक्ति होती है भगवान के वाहनों में, भगवान के मतलब जो आयुध है उनमें, क्योंकि सारी शक्ति भगवान उनको दे रखे। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठकर वहां प्रकट हुए और अपनी कृपा से इन देवताओं और असुरों को पुनः जीवित किया। तब भगवान ने उस पर्वत को अपने एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया और उस पर्वत पर बैठकर उस स्थान पर गए जहां मंथन होना था। गरुड़ ने उस पर्वत को समुद्र के मध्य में रख दिया। तब विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया कि वहां से चले जाओ। क्यों आदेश दिया कि गरुड़ जी आप यहां से चले जाओ? क्योंकि वासुकी नाग तुम्हारे भय से यहां नहीं आएगा। अब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, इस अध्याय का शुरुआत होता है। देखिए सुखदेव गोस्वामी कितने बड़े कमरे हैं, जो कैसे फोटो निकाल सकते हैं, इन श्लोक से आप अनुभव कर सकते हैं कैसे श्लोक के माध्यम से भगवान के स्वरूपों का, भगवान के रूपों का, भगवान की कलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। श्री सुख हुआ तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं स्तुतः सुर गणैर भगवान हरिरीश्वर तेषाम आविर्भवद भूत राजन सहस्रात अर्को दयद्युति ही। जैसे ही देवताओं ने स्तुति किया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवताओं के समक्ष भगवान तेषाम अविरत भूत अवतरित हुए, सामने आ गए राजन। हे राजा, सुखदेव गोस्वामी को संकेत कर रहे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कि सहसा अर्क, सहस्र अर्क मतलब हजारों सूर्य की भांति प्रकाश लिए भगवान वहां प्रकट हो गए। अब अनुभूति कीजिए कि स्तुति में इतनी शक्ति है कि भगवान को प्रकट करा देती है स्तुति। ऐसी कथा गीता में भी आती है, अर्जुन को भगवान ने ऐसा अपना रूप दिखा दिया कि अर्जुन भी चकाचौंध हो गए, असहनीय रूप था उनके लिए। रूपा जी अनुवाद में लिखते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा स्तुतियों से पूजित भगवान हरि उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने के समान प्रतीत हो रहा था। एक सूर्य से एकांशेन, एक श्लोक में आया है कि एकांशेन एक सूर्य से यह जगत पूरा प्रकाशित हो रहा है, पूरी जगत को प्रकाशमान कर देता है एक सूर्य। एकांशेन एक अंश से अगर हजार सूर्य उदित हो तो समझिए कि इस जगत अपने आप जल जाएगा, क्योंकि महाप्रलय के समय यह वर्णन भी है भागवत के पांचवें स्कंद के अंदर कि सूर्य की ऐसी प्रचंड प्रकाश निकलती है कि जिससे अपने आप यह सृष्टि जलना शुरू हो जाती है, इतने सूर्य की गर्मी होती है। अब श्लोक नंबर दो, तेनैव सहसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा नाप संन्यास दिशम छोड़ी आत्मानं च कुतो विहुं। भगवान के तेज के तेज से सारे देवता की दृष्टि चौंधिया गई, वे न तो आकाश दिशाएं पृथ्वी देख सके, नहीं अपने आप को देख सके, अपनी समक्ष उपस्थिति भगवान को देखना तो दूर रहा। जब अपने आप को जो नहीं देख सकते उस प्रकाश में, तो भगवान के देखने की तो बात ही नहीं। अब देखिए इस श्लोक से तो खैर हटने का दिल नहीं करता। इन श्लोकों में तीन चार पांच छह सात सात मतलब इन श्लोकों में केवल भगवान के रूपों का उन्होंने आस्वादन किया है एक एक शब्दों में। विरंचितो भगवान दृष्टा स सर्वेण ताम तनु स्वच्छाम मरकत श्यामा कंज गर्भारुरेक्षणम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विरंची मतलब ब्रह्मा, सर्वेण मतलब शिव, ये दोनों जब स्तुति किए तो भगवान उनके समक्ष कैसे प्रकट हुए, तो स्वच्छता मरकत श्यामा, श्याम रंग के मणि के समान भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। जैसे हम लोग बार बार पढ़ते हैं चरणा मुखाम्भुज चरणाम्भुज बदनाम्भुज, मतलब भगवान का रूप का गुण का लीला का सुंदरता का वर्णन केवल कमल से दिया जा रहा है। इसलिए इस दृश्य जगत का सबसे सुंदर दृष्टांत देने के लिए कमल पर्याप्त है। कोमलता में भी कहिए तो कमल जैसा मुलायम कुछ भी नहीं है संसार में। भागवत के दसम स्कंद में उदाहरण दिया हो गया है मक्खन का, कि भगवान का शारीरिक कोमलता का वर्णन है कि भगवान ऐसे कोमल हैं कि जैसे तुरंत का निकाला हुआ ताजा मक्खन। इसीलिए एक कवि ने लिखा है, भौरों का भी उदाहरण भागवत के अंदर दिया गया है कि यही आशा अटिके रहो अली गुलाब के मूल, अहे फिर बसंत ऋतु इन डारन में फूल। भौरा की एक निश्चयता कितनी है कि जब गुलाब के अंदर जब फूल आना बंद हो जाता है तो वह भौरा संतोष पूर्वक उस गुलाब के जड़ में प्रवेश कर जाता है जमीन के अंदर, और इस आशा से उसके अंदर तब तक रहता है जब तक कि फिर से उस गुलाब के अंदर फूल ना आ जाए। इतनी दृढ़ता है भौरा के अंदर, दृढ़ता है चातक पक्षी के अंदर, दृढ़ता है। इनका उदाहरण भागवत में इसलिए दिया गया है, आशा कितनी एक निश्चितता है कि जरूर एक दिन फूल हमारे पोषक जो पदार्थ है हमारे सामने आएगा। भक्तों को इसे यह शिक्षा लेनी चाहिए इन कथाओं से कि धैर्य रखे, शांति से भगवान के कथाओं को पढ़े और सुने, और यह जरूर विश्वास रखे कि भगवान एक न एक दिन हमारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। भगवान की अनायास कृपा कभी भी हो सकती है, हमारे प्रयास से भले ना हो लेकिन अनायास कृपा जरूर करते हैं। भगवान देखते हैं कि ये क्या कर रहा है मेरे लिए। अब देखिए भगवान के रूप का अवलोकन सुखदेव गोस्वामी अपने शब्दों में कर रहे हैं कि तप्त हेमा बदाते न लसत कौशेय वाससा, जैसे पिघला हुआ सोना चमकता है उसके अंदर निखार आ जाती है, वैसे भगवान का स्वरूप है। यार क्या हम लोग इस संसार के सड़ी हुई वस्तुओं को देखने में आंखें फोड़ते रहते हैं। अगर एक बार भगवान से अगर जिसका नजर मिल गया, अगर ठीक से हमने एक बार भी अगर भगवान को देख लिया तो इस संसार की सारी वस्तुएं सड़ी सड़ी नजर आएंगी। तत्वता देखने का प्रयास करें हम ठीक से तो भगवान के अलावा देखने लायक कोई चीज नहीं है इस संसार में। इस समझ से कौसे यवाससाम, इतनी कोमलता और इतनी सुगंधमय भगवान की स्वरूप है, कांतिमय प्रकाशमय ज्योतिर्मय जितना भी कह लीजिए कम है। यही तो कारण है कि भगवान अपने ही रूप पर खुद मोहित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में अपने रूप का आस्वादन करने के लिए भगवान आए, और भगवान के भक्त जो है इसकी अनुभूति कभी भी कर सकते हैं। अगर भक्ति पद पर चल रहे हैं तो कभी भी कर सकते हैं। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त एक निष्ठ भक्त हुए उद्धव जी, भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है कि त्वयोपभुक्त स्रगंध वासो अलंकार चर्चित उच्छिष्ट भोजनो दासा तो माया जय मही। कि उद्धव जी कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति क्या कर सकता हूं, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि त्वयोपभुक्त आपके द्वारा भोगा हुआ केवल माला, त्वयोपभुक्त स्रगंध आपके द्वारा चढ़ाया हुआ, आपके सर पर चढ़ाया हुआ, गले में डाला हुआ अगर माला मुझको मिल जाए वही मेरे लिए काफी है। भुक्त मतलब आपका खाया हुआ जूठा प्रसाद मिल जाए वही मेरे लिए काफी है। ऐसे व्यक्ति तो माया जय मही, जो आपका प्रसाद आपका प्रसादी माला अगर अपने जीवन में अपनाता है तो माया को जीत लेता। इससे यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि भगवान के चरणों में लगी हुई माला या भगवान को भोग लगाए हुआ प्रसाद भगवान के शक्ति से विभिन्न नहीं है, अलग नहीं है। प्रसन्न चारु सर्वांगी सुमुखी सुंदरम, मैं अनुवाद केवल पढ़ देता हूं क्योंकि समय पूरा होने वाला है। कि शिव जी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल के फूल के भीतरी भाग जैसी लाल लाल है, सो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है। फोटो खींच रहे हैं, कितना मतलब एकाग्र दृष्टि से अगर सुना जाए, एकाकी श्रवण इंद्रिय से अगर इसका आस्वादन किया जाए तो स्वरूप में भगवान घुस जाएगा। उन्होंने उनके सुंदर मुस्काते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित मुकुट था। भगवान की भावें आकर्षक और उनकी गालों पर कान के कुंडल शोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार और पांव में पायल देखे। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे, उनकी गर्दन में कस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी जी थी, तथा वे चक्र गदा आदि निजी आयुध लिए हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा, तब सबने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। देखिए, मैं तो डेली ही देखता हूं, इतने लोग संध्या आरती में आते हैं, चाहे मंगला आरती में आते हैं, तो प्रणाम करने में भी आलस करते हैं। कहा जाता है कि माथा झुकाकर प्रणाम कीजिए। हमें यह ललक होनी चाहिए कि जैसे ही भगवान का पट खुलता है तो हमें, इसमें शब्द आया है देवताओं के लिए कि सर्वांग अवनिम गतई, सारे अंगों से अवनि पर मतलब पृथ्वी पर लोट करके उन्होंने प्रणाम किया। इसलिए भगवान को प्रणाम करने में आलस नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान का पट खुलता है तो सर्वांग मतलब अष्टांग प्रणाम तो पुरुषों को जरूर करना चाहिए और पंचांग प्रणाम तो स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। भगवान को चिढ़ाने जैसा ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, यह बुरा लगता है। अगर कोई अपने ऑफिस में जाए और बड़े बॉस को केवल ऐसे ऐसे करे तो उसको कितना बुरा लगेगा। सबसे बड़े बॉस, सबसे बड़े आराध्य देव भगवान हैं, इनके समक्ष हमें झुकना चाहिए। बड़े बड़े देवता जब झुक करके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं तो हमें झुकने में क्या लगता है। डॉक्टर कहता है लेट जाओ तो तुरंत लेट जाते हैं। अरे भगवान के समक्ष खड़े हो, भगवान के समक्ष प्रणाम करो, इसी से कल्याण होने वाला है। डॉक्टर कितना भी लौटा ले, लेकिन एक दिन तो मरना ही मरना है। देवताओं से सीखनी चाहिए, अपने से बड़ों से सीखनी चाहिए कि हमें भगवान के समक्ष कैसे प्रणाम करना चाहिए। अब आज के श्लोक के अनुवाद को और तात्पर्य को मैं पढ़ता हूं, क्षमा कीजिएगा 5-7 मिनट लेट होगा। कि ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु अवतार के रूप में आपका प्रकट तथा अंतर्धान सदैव चलता रहता है। आज भी भगवान का नित्य नवीन अवतार चलते ही रहता है, आज तक रुका नहीं, और रोज नित्य नूतन नूतन नए नए, क्योंकि इससे पिछले वाले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि मैंने संक्षिप्त में, मैंने तीसरे स्कंद में भगवान के भगवत्ता का वर्णन संक्षिप्त रूप में वर्णन कर दिया है, लेकिन भगवान का संपूर्ण वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जो इस पृथ्वी के धूल को गिन सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने उदाहरण दिया कि हमने अपने ज्ञान के आधार पर हमने संक्षिप्त वर्णन भगवान का किया तीसरे स्कंद के अंदर उनके रूपों का गुणों का, लेकिन कोई अपने को जो व्यक्ति समर्थ समझता होगा कि इस पृथ्वी को धूल बना करके अगर उनके कणों को जो गिन सकता है वही भगवान के अवतारों का पूरा पूरा वर्णन कर सकता है, ये समझ लीजिए। यह प्रमाणिक उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, अर्थात भगवान के गुणों को भगवान के अवतारों को कोई गिन नहीं सकता। आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय में हैं। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आपका अस्तित्व अचिंत्य है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं चौथे अध्याय के छठवें श्लोक का कोट यहां किया है प्रभुपाद जी ने कि अजोपि सन्वय आत्मा भूत्वा नामि स्वरूपि सम प्रकृति स्वम अधिष्ठाय संभवात्माया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं भगवान कहते हैं और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, यद्यपि मैं सारे जीवों का स्वामी हूं फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद्गीता के अंदर कि प्रकृति का मतलब है भगवान का स्वरूप और स्वभाव, कि मैं अगर जन्म भी लेता हूं तो संसारिक जीव नहीं हूं, मैं कुछ करता भी हूं तो संसार के लोगों जैसा नहीं करता हूं, उसमें बंधता नहीं, मैं गुणों को उत्पन्न भी किया हूं तो इन गुणों के रसी में मैं कभी बंधता नहीं। इसलिए प्रकृति शब्द का अर्थ कृपा जी वहां करते हैं चौथे अध्याय के छठे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप। भगवान भगवद्गीता के निम्नलिखित श्लोक में श्लोक नंबर अध्याय नंबर चार श्लोक नंबर सात यहां उद्धृत करते हैं प्रभुपाद जी की यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है तब तब हे भारत मैं स्वयं अवतरित होता हूं। इस तरह यद्यपि भगवान अजन्मा है किंतु कृष्ण तथा राम जैसे अवतारों के विविध रूपों में प्रकट होते हैं। चूंकि उनके अवतार नित्य हैं अतः इन अवतारों द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी नित्य होते हैं। भगवान का प्रकट इसलिए नहीं होता कि सामान्य जीवों की तरह उन्हें कर्म के द्वारा बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करना होता है, भगवान स्वयं जन्म लेते हैं स्वयंभू। यह समझना होगा कि भगवान का शरीर तथा उनके कार्यकलाप दिव्य है, अतः वे भौतिक प्रकृति के गुणों के कलवश से मुक्त होते हैं। ये लीलाएं भगवान के लिए दिव्य आनंद है। अपरिगण्य धामने शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हमारे परिकल्पना और गणना से परे है। भगवान द्वारा विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए उनको अपरिगण्य धामने कहा गया है। ये सारे अवतार सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। भगवान के किसी भी अवतार को ले लीजिए, अगर उस अवतार की अगर स्तुति करते हैं उस अवतार को अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं तो उसी से आपका परम कल्याण हो सकता है। क्योंकि जितने भी भगवान के अवतार हैं हमारे लिए यह प्रेम उत्पन्न करने के लिए, भगवान किसी भी रूप में जब जिस जिस रूप में भगवान के भक्तों ने याचना किया उस रूप में उस रूप में भगवान आए। सूकर रूप भगवान लेकर के आए तो यह मत समझ लीजिए कि इस जगत का सूअर, कुछ भी भगवान मत्स्य के रूप में अवतार लिए, कच्छप के रूप में कुर्ब के रूप में अवतार लिए भगवान ने, लेकिन उनका कोई भी स्वरूप कोई भी अवतार इस वंदनीय है स्तुतिमय है। इसलिए इस कथा प्रसंग से अनिवार्यता शिक्षा यह है कि हम भगवान को नियमित रूप से कुछ न कुछ प्रतिदिन प्रार्थना करें, स्तुति करें। जिनको जो स्तुति उनके हृदय में घर करता है उसको स्मरण करें और प्रतिदिन प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, इस प्रकार की भावना हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न हो जिससे हम आपको प्रार्थना करके हम आपके नजदीक आ सकें, आपके भक्ति में लग सकें। प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रार्थना करने चाहिए। भागवत प्रार्थना ग्रंथ ही है, केवल स्तुतियों से भरा हुआ है। प्रथम स्कंद से शुरू कीजिए, 12वें स्कंद तक जाइए, लगभग हर एक दो अध्याय के बाद कुछ न किसी न किसी की स्तुति है। महत मतलब पुरुष के चरणों की वंदना की गई है, इसलिए प्रार्थना को याद करनी चाहिए। जैसे गजेंद्र स्तुति पीछे गया, हर भक्त को गजेंद्र स्तुति याद करके या नहीं याद होता है तो पढ़ना चाहिए, हिंदी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जरूरी है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं तब तक कुछ सुनवाई नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। कहना पड़ेगा भगवान से कि भगवान मैं आपका हूं, दासो हम कृष्ण से, हे कृष्ण मैं आपका दास हूं, हमारे अंदर दासता की योग्यता दीजिए, भगवान देते हैं। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिए, हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद।